हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका मानगढ़ पर स्वागत है। मानगढ़ के ऊपर मान मंदिर है और उसमें ये सुंदर वन है, इसका नाम है मान इंगित वन, जिसमें हम लोग अभी बैठे हुए हैं। ये मान इंगित वन को परम पूज्य ब्रज के प्रख्यात संत रमेश बाबा जी महाराज के अनुयायियों ने इसको जीर्णोद्धार किया है, इसलिए आपकी सेवा में बहुत सुंदर सुंदर वन यहाँ पर अभी उपलब्ध है। हरे कृष्णा। केवल संतों की ही दया से धाम प्रकट होता है और रमेश बाबा जी महाराज का उल्लेख जो है वो महाराज के हमारे गुरुदेव के ग्रंथ में भी आता है, अनोखा सफ़र जर्नी होम। इसमें जो वृंदावन खंड है इसके अंदर घनश्याम बाबा के कहने से वृंदावन से राधानाथ स्वामी महाराज उस समय रिचर्ड आए थे यहाँ पर, और श्री जी का दर्शन करते करते हम लोग जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से रिचर्ड यानी कि राधानाथ स्वामी इस गढ़ पर आए थे। केवल फर्क इतना ही था, जो रास्ता बना हुआ है अभी अच्छी तरह सड़क बनी हुई है वो नहीं था, केवल पत्थर पत्थर ही थे, और रास्ता भी कुछ 15 साल पहले बना हुआ है। तो यहाँ पर 1971 में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज घनश्याम बाबा के कहने पर आए थे। उन्होंने कहा श्री जी की कृपा और साक्षात्कार आपको यहीं होगा। तो उस समय 1971 में यहाँ पर केवल 2-4 लोग ही रहा करते थे। रमेश बाबा जी महाराज वैसे इलाहाबाद के हैं, उनका जन्म जो है वो इलाहाबाद का है। उनका घर में केवल एक ही कन्या थी माता पिता को, और पुत्र नहीं था, तो उनके माता पिता रामेश्वर जाकर उन्होंने मन्नत मांगी थी, उसके फल स्वरूप इनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम है रामेश्वर प्रसाद शुक्ला। ब्राह्मण कुल के उम्र के 12 साल के अवस्था में ये घर छोड़ के भाग गए। पहली बार भागे तो डर के मारे फिर लौट गए, बालक थे ना, ट्रेन में इनकी भीड़ देखकर डर गए। अगली बार भागे तो टीसी ने पकड़ लिया और दोबारा भेज दिया। तीसरी बार भागे तो फिर अच्छी तरह भागे और ब्रज में आए। कई दिन तक उन्होंने यहाँ वहाँ दर्शन किया, फिर आखिर में आकर वो यहाँ बस गए। 1952 साल की बात है, 1952 साल में उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। तो उसके बाद में 19 साल के बाद जब वो यहाँ पर आए थे, तभी इस समय ये बहुत खंडहर था, यहाँ पर कुछ नहीं था। उसके अंदर एक गुफा भी है, वहाँ पर डाकू लोग अपना लुटा हुआ सामान छुपाया करते थे और केवल डाकुओं का अड्डा था। तो उसमें आकर रमेश बाबा जी मतलब रमेश रहने लगे, और कुछ समय बाद में उनका उनके गुरु के साथ परिचय हुआ जो प्रेम सरोवर पे आए थे। उनका नाम था प्रियाशरण जी बाबा महाराज, और प्रियाशरण जी बाबा ने उनको राधे यही मंत्र दे दिया और कहा कि इसी मंत्र का आपको जप करना है और घुटने तक ही आधी धोती पहनना है और कभी भी ब्रज के बाहर नहीं जाना है, इतनी आज्ञा दिया। तब से रमेश बाबा जी महाराज यहीं पर विराजमान हैं। कई डाकुओं ने कई लोगों ने उनको धमकियाँ दी जान से मारने की, क्योंकि डाकू लोग यहाँ पर सामान छुपाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मरने के लिए तो आए हैं, तो मरने से कौन डरता है, क्योंकि जब एक बार वो रहने लगे यहाँ पर तो कई डाकुओं ने बंदूक बंदूक लेकर यहाँ पर वो आए और उनको धमकी दिया। उस समय हमारे गुरुदेव भी उनके साथ में थे, उन्हें बहुत ज़ोरदार धमकी दिया, जान से मार देंगे। तो उन्हें जवाब दिया हम तो मरने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मौत से नहीं डरते, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो चले गए, वो कुछ नहीं कर पाए। सबसे बड़ा डर जो व्यक्ति को किसका होता है, मृत्यु का होता है। साधु जो है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, दुनिया की कोई भी चीज़ उसको डरा नहीं सकती उसके बाद में। वैसे एक बार जब हमारे राधानाथ महाराज जी यहाँ पर रहते थे तो उस समय केवल 4 लोग थे, एक रमेश बाबा, एक सखी शरण बाबा, एक प्रकाश सिंह और एक हमारे रिचर्ड राधानाथ स्वामी, इतने लोग रहते थे। और सखी शरण बाबा और राधानाथ महाराज दोनों पहाड़ से उतरकर दो दो बाल्टियाँ एक बार उठाकर ऊपर आते थे और उसी में अपना स्नान वान सब करते थे। फिर दिन में जाकर पीछे इसके पीछे मानपुर है, मानगढ़ के पीछे मानपुर, उसके पीछे मानपुर में जाकर भिक्षा करते थे। और भिक्षा का स्टाइल क्या था, किसी भी घर में जाएंगे उसके दरवाजे पे खड़े रहकर कीर्तन करना है, तो कीर्तन करेंगे तो घर की मैया आएगी और रोटी दे देगी और बोलेगी अंदर आके थोड़ा सा भजन भी कर लो। ऐसे सुंदर मान और आदर के साथ में भिक्षा माधुकरी हुआ करती थी। हाँ, आगे चलो आगे चलो, ऐसा नहीं होता था। साधु आया भजन किया तो उसको रोटी देना ही है, और फिर वो सब माधुकरी इकट्ठा करके ये लोग पहाड़ पे चढ़ के बाबा को देते थे, बाबा जी सबको बांट के सब लोग भोजन किया करते थे। इस तरह से उनका समय बीता। और एक समय पर ऐसे ही सबको पता चला था कि चीता आ गया है, चीता यू नो लेपर्ड। तो रात को सोते समय वो जो हम लोग अभी गए ना मंदिर दर्शन करने के लिए, तो जो छत है ना प्लेटफॉर्म है ना, वहीं पर वो जो गोल बना है ना, वहाँ पर बड़ा गोल बना है, एक पेड़ है ऐसा आया हुआ, उसके नीचे एक गोल बना हुआ है ज़मीन पर, वहीं पर लोग सोते थे, रमेश बाबा जी, राधानाथ महाराज, सखी शरण बाबा। उस प्रकाश सिंह गृहस्थ थे, अभी भी है वो, 80-85 हज़ार की अवस्था हो गई उनकी, अभी भी रोज़ मंगला करते हैं, दर्शन करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। और उनके पुत्र जो है राधाकांत भैया जी सिंह, वो अभी मान मंदिर सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो भी समर्पित हैं, ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं। तो वहाँ पर ही वो सोते थे, और युवा अवस्था में रमेश बाबा जी तूफानी नृत्य किया करते थे। तूफानी मतलब आप उसका वर्णन और अंदाज नहीं कर सकते, वो हमने भाग्य से दर्शन किया उसका, इतना तूफानी दर्शन करते थे कि आपको लगेगा कि हवा में उड़ जाएंगे अभी, इतना जोरदार कीर्तन करते थे। वो भी शाम को पूरा कीर्तन भजन नृत्य करने के बाद में केवल विरक्त लोग ऊपर आते थे, केवल सन्यासी या ब्रह्मचारी लोग, और वही वहाँ पर 1 बजे तक टंगड़ा उसके ऊपर भयंकर, उनका भयंकर नहीं कह सकते उसको, भयंकर तो दुनिया का शब्द है, लेकिन ऐसा उत्कट भाव भरा हुआ प्रचंड कीर्तन करते थे, बहुत रात तक करते थे। तो वही सोते थे उसके बाद में। तो एक दिन चीता आया तो रमेश बाबा जी एक डंडा लेकर वहाँ पर सोने के लिए गए, डंडा लेकर। तो हमारे महाराज ने उनको पूछा कि ये डंडे से क्या करोगे आप, डंडे से आप थोड़ी चीता को मार सकते हो, हम चीता को क्या मार सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य करना हमारा फर्ज है, बाकी श्री जी संभाल लेंगे, हमारा फर्ज है अपनी तरफ से रक्षा करना, तो मैं हमारी तरफ से डंडा रख रहा हूँ, आगे क्या करना है वो श्री जी महाराज ने देख लेंगे। सो दिस इज यू नो आई विल डू माई पार्ट एंड शी विल डू हर पार्ट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम जानते हैं कि हमारा जो सुरक्षा हम अपने लिए करते हैं वो काफ़ी नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें अपना प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ नहीं करना है भाई, श्री जी भरोसे बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना कर्तव्य हमको करते रहना चाहिए, बाकी उस पर छोड़ देना चाहिए। फिर यहीं पर राधानाथ महाराज जी को एक बार दस्त लगे थे बहुत भयंकर, और उस समय इतने कमज़ोर हो गए थे कि जहाँ बैठकर वो दस्त हो रहे थे वहीं से उनको उठने को भी नहीं हो रहा था, इतने भयंकर अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में, इसलिए मेडिकली उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, सब कंडीशन में थे, शॉक जैसे कंडीशन में थे, उठ नहीं पा रहे थे, आँखों से ऐसा धुंधला धुंधला अंधेरा नजर आ रहा था। उसी समय पड़े हुए अवस्था में उनके सामने एक नाग आया ऐसे और खड़ा हो गया उनकी ओर देखते हुए। तो महाराज ने बोला कि अभी काटे का तो मर जाना है, और कर भी क्या सकता हूँ, आई कैन नॉट रन अवे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं प्रतिकार और सुरक्षा के प्रयास के परे जा चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना किया, राधा रानी आपकी इच्छा है तो सर्प को दंश करने दो, नहीं इच्छा है तो जैसे आपकी इच्छा है होने दो। बहुत देर सर्प वहाँ रहा, देखता रहा, ताकता रहा, फिर चला गया। ऐसे जीवन मृत्यु के बीच के संघर्ष के अनुभव उनको यहाँ पर हुए। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे यहाँ के ब्रजवासी जैसे कि राधाकांत भैया जी हैं वो बताते हैं कि जब वो सबसे पहले आए थे तो वो सब लोग 4-5-8-10 साल के थे, महाराज जी भी 19-16-17-19 के साल के थे, और वो भी सब 15-16 ऐसे, मतलब बहुत छोटे उम्र के थे। तो राधाकांत जी भैया जी कहते हैं कि वो जब यहाँ पर आए थे तो उनकी आंखों में ऐसा भाव था कि वो कुछ खोज रहे हैं, सर्चिंग समथिंग, और वो खोजते खोजते ही यहाँ पर आए हैं, उस वस्तु को खोजते खोजते ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन आज जब हम उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में ये भाव है कि जिसके खोज रहे थे वो उनको मिल गया है, ऐसे उन्होंने हमको एक बार बताया था। अभी ये बात तो वही कह सकते हैं, हम थोड़ी कह सकते हैं, उन्होंने देखा हुआ है सब कुछ, उनके साथ रहे यहाँ पर। तो राधानाथ महाराज यहाँ पर 6 महीने तक रहे, 6 महीने तक इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अंतरंग अनुभव किए, राधा रानी का बहुत उत्कट अनुभव यहाँ पर किया, और भक्ति का रहस्य यहाँ पर वो समझे, भक्ति में निर्भयता कैसे होती है, भक्ति में भक्त निर्भय कैसे हो सकता है, जो राधा रानी के भरोसे रहता है वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। रमेश बाबा जी का एक व्यक्तित्व का एक सबसे प्रधान अंग जो है, जो मैंने देखा है, वो है निर्भयता। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये जो आप घेवर बन की बात करते हैं, हम लोग ये घेवर बन श्री जी मंदिर से आरंभ होता है और यहाँ आगे तक चलता है चिकसोली, तो इसकी बहुत नासधूस हो रही थी, बहुत सारा लोगों ने इसको ध्वंस करने का प्रयास किया था। तो 46 साल तक बाबा महाराज ने इसका संघर्ष किया है, और जब हम पहले पहले उन कैंप में आए थे 92 में, तभी भी संघर्ष जोरदार चल रहा था, उसमें डकैती, उसमें ये धमकियाँ वमकियाँ, कोर्ट के सब, पुलिस का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स सब चल रहा था। 46 साल के संघर्ष के बाद में उन्होंने घेवर बंद को एक हेरिटेज यानी कि पुरातन संस्कृति का स्थान घोषित करके अभी उसको लॉक किया गया है, और बड़ी सुंदरता से, जैसे राधा रानी ने अपने हाथों से इस घेवर बंद को सजाया था, सींचा था, उस तरह से यहाँ के ब्रजवासियों ने घेवर बंद को दोबारा एक बार पुनर्स्थापित किया है, और बहुत ही सुंदर दर्शन आपको नीचे मिलेगा। जब आप पहाड़ उतरेंगे तो सुरक्षित घेवर बंद का आपको दर्शन मिलेगा, बहुत सुंदर। उसके बाद में उस समय 20-25 साल पहले यहाँ के पहाड़ तोड़ने का काम शुरू हुआ, लोग तोड़ने लगे। अभी आप जानते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं हम, लेकिन पहाड़ एक बार टूटेंगे उसका जीर्णोद्धार कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ के पहाड़ जो है वो साधारण पहाड़ नहीं है, ये हर एक पहाड़ पर अनंत लीलाएँ हुई हैं, ठाकुर जी राधा रानी बैठा करते थे, खेला करते थे। जैसे हम लोग गए थे उधर, आप भी जाएंगे ऊँचे गाँव में, वो सखीगिरी पर्वत है, वहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह हैं, राधा रानी के हस्त चिन्ह हैं, मेहंदी शिला है, ब्याहुला स्थान है, दूध कटोरा है, खिसलन पहाड़ी है, कितने अनंत स्थान है। वो पूरी सखीगिरी जो है वहाँ से लेके यहाँ तक विस्तारित हो गई है। सखीगिरी को ही वो लोग डायनामाइट डाल के तोड़ने लगे थे, तो वहाँ पर बाबा ने जाकर फिर अनशन आंदोलन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भूख हड़ताल, आमरण अनशन शुरू किया, और पहाड़ों की लड़ाई भी बहुत साल चली। उस समय हम लोग यहाँ पर आते थे तो डायनामाइट फूटने का आवाज़ बार बार सुनाई पड़ते थे, धड़ाड़ धड़ाड़ करके ठाकुर जी के पहाड़ तोड़ते थे वो लोग, क्यों, बिल्डिंग बनने के लिए। हाँ, फिर वो लड़ाई भी वो जीत गए, और अभी पहाड़ का खनन जो है बंद है। बार बार वो गवर्नमेंट के लोग पॉलिटिक्स करते रहते हैं, लेकिन इनका संघर्ष जारी है मान मंदिर की ओर से। अभी यमुना जी को शुद्ध करने का महाअभियान चल रहा है, आप सुने होंगे ना ईमेल से, कई बार, कई साल तक यमुना आंदोलन चल रहा है, और उसमें भी काफ़ी यश अभी प्राप्त हुआ है और आगे भी होगा। इसलिए मैं अभी व्यासासन पे मान मंदिर में बैठकर सबको एक आह्वान कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि पैसे प्रभु जी ऐसा आह्वान क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे स्थानों पर आते रहें, और आपको लगता है कि आपके बच्चे भी यहाँ पर आते रहें, और तब भी ये स्थान वैसे ही रहे, उपलब्ध रहे, दर्शन करने लायक रहे, और भी हमारे स्थान जीर्णोद्धारित हो जाएं, दर्शन मिलता रहे, कुंडों का भी उद्धार होता रहे, कुंड भी सुरक्षित रहें, हजारों हजारों यहाँ पर कुंड है हमारे धाम में, यहाँ पर भगवान के धाम में, ऐसा आपको लगता है तो हमें गवर्नमेंट में बदल लाना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो गवर्नमेंट है वो सब ये स्थानों को नष्ट किए हुए जा रही है, कुछ उसका काम नहीं हो रहा है, तो हमें बदल चाहिए। सब लोगों को 2014 के इलेक्शन में वोट देना है, याद रखना, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो ना आपका धर्म रहेगा, ना आपका धर्म पालन रहेगा, ना आपकी साधना रहेगी, और आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपको गुफा में छुपकर जप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़ोरदार गवर्नमेंट की ओर से सब लोगों को क्रिश्चियन बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, मिजोरम राज्य पूरा क्रिश्चियन बन चुका है, केरल राज्य बनने जा रहा है, इस तरह से राष्ट्रीय गुप्त कार्यक्रम है वो, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये सब हो रहा है। तो हम लोग को जगना चाहिए, हम लोग भक्त हैं और भक्ति भी हमको करना है, तो इस तरह से विरक्त होकर नहीं चलेगा, हमको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमको आगे जाकर खुलेआम भक्ति का साधना करनी है तो सब लोग इस बात को थोड़ा गंभीरता से ले लें, ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में जब तक भक्त लोग नहीं हैं तो संघर्ष चलता रहेगा, गवर्नमेंट तो पैसे खाने के बैठी है, भक्त लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन नुशावर कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पर अनशन उपवास करने के लिए कई बार बैठ चुके हैं, पहाड़ों के लिए भी, वनों के लिए भी, और धीरे धीरे अभी जागृति हो रही है। तो मुझे पहले लगता था कि बाबा महाराज जी ब्रज की यात्रा में बार बार ये बातें क्यों करते हैं, तो कथा करनी चाहिए ठाकुर जी की। फिर मुझे भी समझ में आया ये कि वो जन जागृति नहीं होगी तो हमारे स्थान का रक्षा कैसे होगा, अगर हम ही लोग ठंडे हैं, हमारे मन में हमारे स्थानों के लिए कोई प्रेम नहीं है, हमको ही हमारे जमुना जी के लिए, गंगा जी के लिए कोई आस्था नहीं है, हमको ही हमारे ब्रज के वनों के लिए कोई प्रेम नहीं है, बस दर्शन करके जाना है, अपना अपना बिजनेस बम्बई में करना है, ऐसे जीना है, तो एक दिन हमारे अगली पुष्टियों को कुछ दर्शन नहीं होगा, खाली आकर बैठेंगे बोलेंगे यहाँ पर ना मान गीत वन हुआ करता था। अब हम लोग वो पुना की टीम को लेकर आए थे, बड़े अच्छी हरियाली थी, अभी खंडहर हो गया है, यही बताना पड़ेगा और क्या है। कई जगह ऐसे मैं कथा करता भी हूँ कि यहाँ पर लुकलुक कुंड हुआ करता था, अभी प्लॉट बनकर बिक रहे हैं उसको, ऐसे कथा करनी पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कथा ना करनी पड़े और स्थान वैसे ही रहे और उनका गुणगान भी वैसे आपके साथ में होता रहे, तो आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ होगा, इसलिए चेंज नेसेसरी, सबको इसमें सतर्क होकर जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारे धर्म का क्या हो रहा है, और ऐसे ठंडा होकर नहीं चलना, नहीं चलेगा, है ना। आगे जाकर अगर कहते हैं ना टू बी और नॉट टू बी, ऐसे हो जाएगा टू बी अ डिवोटी और नॉट टू बी अ डिवोटी, दैट विल बी अ क्वेश्चन। आज क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बिकम अ नाइस डिवोटी, अगर आप ठंडे रहेंगे ऐसे तो कल पूछना पड़ेगा टू बी अ डिवोटी और नॉट टू बी अ डिवोटी, सब लोग अपना भेष बदल कर डिस्गाइज हो जाएंगे डर के मारे, तो ये नहीं होने देना है, और ये सब हमारे हाथ में है। एनीवेज, तो मैं कह रहा था कि रमेश बाबा जी महाराज ने यहाँ पर बहुत संघर्ष और लड़ाई लड़ी हुई है केवल राधा रानी के भरोसे, उनके पास कोई धन नहीं है, कोई ऐसा पावर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं है, केवल हरिनाम पर उनका इतना विश्वास है। एक तो उनके व्यक्तित्व का अंग है निर्भयता, जो मैंने देखा हुआ है, जो मुझे बहुत भाता है उनका वो स्वभाव, वो कभी किसी से डरते नहीं है। यहाँ पर अर्जुन सिंह भी आया हुआ है, यहाँ पर बड़े बड़े से केंद्रीय मंत्री भी आए, सबको डांट देते हो, क्योंकि जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं किसी से, वो क्यों डरेगा उसको। मुझे आपसे कुछ चाहिए तो फिर आपको मैं सम्मान करूंगा, वो मीठी मीठी बातें करूंगा, लेकिन जो व्यक्ति विरक्त है, इसको जीवन से भी कोई लेना देना नहीं, सब ठाकुर जी के अर्पण है, वो क्यों डरेगा किसको, सत्य की बात बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में करेगा। जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री संतरे आते रहते हैं उनको सब डांटते रहते हैं वो कि आप लोग सब केवल पैसे के लिए बैठे हो, कुछ नहीं करते हो, कल पैसा खाने के लिए अधिकारी बने हो, इलेक्शन जीतते हैं कल पैसे के लिए करते हो, धर्म के लिए राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करते हो, ये बोलना जरूरी ना, कोई ना कोई बोलना चाहिए ना, उनको बोलते हैं। रवि जमुना जी का लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उनका आगे का ऐसा एक प्लान है जो हम लोगों को सबको इसमें ध्यान देना है। हमने एक मंत्र बोला ना बीच में, एक मिनट देखता हूँ किधर का, हरे कृष्ण इधर ही है इसमें, क्या बोला था हमने, महिभानुसुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः सर्वदा गोकुले वृद्धिम प्रयच्छ मम कांक्षितम। दूसरा पार्ट इस मंत्र का ऐसा है जो बरसाने की प्रार्थना मंत्र में कहा था हमने, सर्वदा गोकुले वृद्धिम, सब जगह गायों की वृद्धि होनी चाहिए। तो बाबा भी ये मंत्र सबसे बुलवाते थे यात्रा में, तो उनको भी प्रश्न था कि अभी ये मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब क्या है उसका, उस समय गौशाला भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, गायों का वृद्धि का कोई काम नहीं था, लेकिन आज बाबा महाराज की कृपा से यहाँ पर बरसाने में चिकसोली और दोबारा के बीच में 23,000 गायों का गौशाला है, आपको पहाड़ से दर्शन हो सकता है, एक जगह पर 23,000 गायें रहती हैं, और बची हुई जो 2,000 गाय जो है वो काम्य वन में और एक गौशाला खोली है वहाँ पर रहती है। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा से हमको मंत्र का जप करना चाहिए, तो मंत्र का प्रभाव ऐसा निकला चमत्कार, गायें भी अपने आप आ गई, और गायों का कैसा गौशाला है, गाय से कोई भी अपेक्षा नहीं करते कि हमको दूध मिलेगा, घी मिलेगा, दग मक्खन मिलेगा, केवल गाय की सेवा करते हैं। 23,000 गाय में केवल शायद 200 गाय ही दूध देने वाली होंगी, बाकी सब साय एक्सीडेंट वाली, बड़ी बूढ़ी, ड्राई काउज मतलब दूध नहीं देने वाली, और ऐसे एक मैटरनिटी होम है उसके अंदर बच्चे गाय हैं, उसके अंदर एक काली मतलब एक दूध देने वाली, बहुत सारी एक हॉस्पिटल है उसके अंदर जो एक्सीडेंट वाली बीमार ऐसे गाय, बड़ा परिवार है गाय का। दिन का केवल 8 लाख रुपए खर्चा है, कितना बताया, ओनली 8 लाख रुपीज़ पर डे, तो कितना हो गया महीने का 2.5 करोड़ रुपए। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन श्री जी महारानी के भरोसे पे एक संकल्प लिया है और सब कुछ चल रहा है। आज पता नहीं कल का पैसा कहाँ से आएगा, कल पता नहीं परसों का कहाँ से आएगा, लेकिन सब चल रहा है। राधा रानी की यात्रा भी चल रही है, हर साल 40 दिन की यात्रा निकलती है, वो सब फ्री रहती है, एवरीथिंग फ्री ऑफ चार्ज। उसमें 15,000 यात्री चलते हैं पैदल, ब्रज परिक्रमा करते हैं, एक साल अंतर्गत यात्रा करते हैं, एक साल बॉर्डर की यात्रा करते हैं। 15,000 लोग चलते रहते हैं, उनको भोजन पानी सब फ्री में चलता है। तो उनके अंदर मैंने एक देखा निर्भयता और दूसरा देखा हरिनाम के ऊपर श्रद्धा। वो कहते हैं हम सब जगह पर जो भी कार्य करना चाहते हैं उधर हरिनाम की मंडली बिठाते हैं, अखंड हरिनाम करते हैं। हमारे यहाँ पे कैसा होता है 12 घंटे का 3 दिन बाद में बंद, वो 24 घंटे का अनलिमिटेड काम होता है हरिनाम का। जब तक उस धाम के उस कुंड के उद्धार में कोई योजना नहीं बनती है तब तक ये लोग अपनी मंडली बिठाकर वहाँ पर अखंड कीर्तन करते रहते। मतलब क्या, राधा रानी को पुकारना, इसी के बल पर यहाँ पर सारे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी किताब बिकती नहीं है, जो किताब बनती है वो उसको फ्री में बांटते हैं। कोई सीढ़ी बिकती नहीं है, जो सीढ़ी बनती है उसको फ्री में बांटा जाता है। जो भी है सब फ्री है। इसके लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा होगी तो राधा रानी सब कुछ करती है। दूसरा मैंने देखा है उनके अंदर हरिनाम के अंदर श्रद्धा। इसलिए जब हमने पहले कैंप लगाया बरसाने में 1992 में, तो इन्हीं की प्रेरणा से हमारे कैंप में भी हमने अखंड कीर्तन शुरू किया जो आज भी चल रहा है। भले दिन में क्यों ना हो, पहले हम लोग अखंड करते थे, रात भर करते थे, अभी कैंप में हम लोग दिन में कीर्तन करते हैं। सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक अखंड कीर्तन पार्टियाँ कीर्तन करते रहती हैं। इन्हीं के सहारे इन्होंने कहा था कि आपके कैंप में आपके औजारों से और आपके एक्सपर्ट डॉक्टरों से यश नहीं मिलेगा आपको, आपको यश मिलेगा कैंप में, लोगों को दृष्टि प्राप्त होगी तो वो केवल श्री जी की कृपा से ही प्राप्त होगी, इसलिए आपको कीर्तन करना होगा, कीर्तन के सहारे। इसलिए हम लोग जब ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उसके बाहर ही कीर्तन मंडली को बिठाते हैं और वो अखंड कीर्तन करते रहते हैं। डॉक्टरों को बताते हैं यश जो है आपकी उंगलियों में नहीं है, यश जो है वो हरि नाम के अंदर है, उसको सुनते रहो और उसको प्रार्थना करते रहो, तब लोगों को दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ब्रजवासियों की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उनकी आँख में हाथ लगाते हैं तो दृष्टि देना हमारा फर्ज है। वी आर नॉट डीलिंग विद ऑर्डिनरी आइज, वी आर डीलिंग विद आइज विच आर गोइंग टू सी राधा एंड कृष्णा लाडली एंड लाल एज सुन एज दे बिकम ऑल राइट। वी आर नॉट ट्रीटिंग दोज आइज विच आर गोइंग टू सी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड फिल्म सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। तो इसलिए बहुत गहरा, उत्कट और इंटेंस कार्य है। तब से लेकर आज अभी 22 साल हो गए हैं, हर कैंप में हम लोग इन्हीं की प्रेरणा से हरिनाम संकीर्तन की मंडली बिठाते हैं। पुणे से भी कई साल हमारी मंडली वहाँ से आती थी इस कैंप में सहायता करने के लिए, अभी भी आप लोग भेज सकते हो, क्योंकि हरिनाम अगर बरसाने में बैठ कर करने का मौका मिलता है उससे बड़ी भाग्य की क्या बात हो सकती है। हाँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, बाबा भी सोचते हैं, हम भी उनकी प्रेरणा से सोचते हैं। तात्पर्य यह है कि हरिनाम पर श्रद्धा होनी चाहिए और बरसाने की यात्रा, ब्रज की यात्रा जो है वो हरिनाम के ऊपर की श्रद्धा जो है हज़ारों गुना बढ़ाकर आपको प्राप्त होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारी यात्रा सफल है। न तो आए और गए, है ना, भागवत में क्या कहते हैं व्यासदेव जी महाराज कि गधा, ऊंट और डुक्कर मतलब पिग ये भी धाम में आते हैं और वैसे हम भी आते हैं और जाते हैं। तो अगर हमें हरिनाम के अंदर रुचि नहीं पैदा हुई, श्रद्धा नहीं पैदा हुई, समर्पण नहीं पैदा हुआ भक्ति के मार्ग के लिए, तो हम भी वैसे ही आए और वैसे ही गए, सएव गोख रहा, गधा गाय और ऊंट और सुअर इनकी जैसे हमारी यात्रा होगी। तो हमको ऐसी यात्रा नहीं करनी, हमको मनुष्यों की यात्रा करनी है, धाम का रहस्य, धाम का जो सार है उसको स्वीकार करना है। और ये सब बताने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम लोग ऐसे स्थान में बैठे हैं, इतने उत्कट स्थान में बैठे हैं कि बाकी सब लीलाएँ तो प्रकट लीला है, सख्य लीला है, हास्य लीला है, राक्षसों को मारने की लीला है, माखन चोरी है, लेकिन जो माधुरी लीला है वो बहुत अंतरंग है। वो सबके बस की बात नहीं है समझना उसको, जैसे कहते हैं ना शेरनी का दूध, वो सब लोग हजम नहीं कर सकते। तो ये जैसे शेरनी का दूध है, बहुत मुश्किल समझने के लिए और अपनाने के लिए। इसमें पतन की शक्यता अधिक होती है और वृद्धि और एडवांसमेंट की शक्यता कम रहती है, ये मामला ऐसा है। तो उसके पहले कि यहाँ की जिला मैं बताऊँ आपको, आपने कल सब लोगों ने मदन मोहन जी ब्रजवासी के बारे में कथा सुनी ना रात को, कितने लोगों ने सुनी? हाँ सब लोगों ने सुनी, तो उसको मैं नहीं दोहराऊंगा दोबारा पूरी। लेकिन मदन मोहन जी का हमारा परिचय 1979 में हुआ था, 1989 में, जब हम राधानाथ महाराज जी के साथ में छोटे से ग्रुप में झूलन यात्रा में आए थे। तभी बहुत बड़ी सभा बैठी थी और तभी बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी हम हमारा चर्चा बंद करते हैं, अभी हम आपको मदन मोहन जी से इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा कोई परिचय करें इनका, ये तो केवल मिश्री है, मिश्री अभी आप ही सुनेंगे, इतना ही बोला एक ही लाइन कि ये मिश्री है। मिश्री मतलब जो होता है ना मीठा, माखन के साथ में खाते हैं। और एक मिनट के अंदर मदन मोहन जी ने बाजा लिया, वो गाना शुरू कर दिया, श्याम रंग में ऐसी भीगी, श्याम रंग में ऐसी भीगी, श्याम भई मैं श्याम, सखीरी श्याम भई मैं श्यामरी। वो एक गोपी की अवस्था जो है उसका वर्णन उस भजन में आता है। कैसी अवस्था है गोपी की? उसको सब जगह पर शाम ही शाम दिखाई पड़ते हैं, घर में शाम, बाहर शाम, इत देखूं उत शाम, हाँ पनघट पे शाम, जमुना तटी शाम, डाल डाल पे शाम, मेरे जीवन संगी शाम, मेरे सजनी शाम, मेरे सांसों में शाम, मेरे धड़कन में शाम, सब जगह जहां जहां गोपी जा रही है उनको केवल शाम नजर आ रही है। पनघट शाम श्याम जमुना तटी, जित देखूं तित शाम, जित देखूं तित शाम, सखीरी जित देखूं तित श्यामरी। सखी को बता रही है कि ऐसी मेरी अवस्था हो गई, मेरे जीवन में भी कुछ बचा ही नहीं है, सब जगह शाम ही शाम है। और एक भजन, इतना उत्कट भजन गाया कि ऐसे मुझे छू गया वो भजन, और भगवान की दया से मैंने उसको उस समय रिकॉर्डिंग भी किया था, जो इनके पास भी नहीं है आज। तो वो मदन मोहन जी ब्रजवासी, वैसे तो उनका बांस का, ये जो बांस है ना ये आप देख रहे ना, ये उन्हीं का भेंट दिया हुआ है 2001 साल में। आप सोचते होंगे प्रभु जी इसको लेकर क्यों घूमते हैं, ये तो बंदर का बहाना तो है, लेकिन अंदर की भावना इसकी है कि हमारे प्रिय मदन मोहन जी ने हमको इसको भेंट दिया था 2001 साल में, जब हम लोग बाबा महाराज की तरफ से गोमती गंगा कोशी में है, वहाँ पर ठाकुर जी ने द्वारका को प्रकट किया है कोशी में। तो गोमती को सब ब्रजवासियों ने कहा कि हमने सोचा कि सुना था कि आपने बहुत विरह अनुभव किया द्वारका में, और आप रोते भी थे, और आपके अश्रुओं की नदी भी बनी हुई है गोमती नाम की, तो हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो ब्रजवासियों के आनंद के लिए भगवान ने गोमती नदी द्वारका की जो है वो कोशी में प्रकट किया उसको, और पूरा बोला कि आप सागर किनारे रहते थे, आपका राज्य था द्वारका का, हमको उसका भी दर्शन करना है। तो भगवान ने गोमती के बाजू में फिर रत्नाकर प्रकट किया, रत्नाकर कुंड द्वारका के सागर को यहाँ पर भगवान ने विराजमान किया। तो ये गोमती का जो कुंड है उसका जीर्णोद्धार का समय था, और वहाँ पर भी उन्होंने कीर्तन मंडली बिठाई थी कई महीनों तक, फिर आखिर में पैसा आके गोमती का जीर्णोद्धार किया गया। तब वो 2001 साल में हम राधानाथ महाराज जी के साथ में उसके फंक्शन में गए थे, गोमती जब लोकार्पण किया गया तभी, तो तभी मदन मोहन जी ने ये घर से लाकर हमको ये डंडा दिया था, क्योंकि उनका खुद का बांस का बिजनेस था, और वो बड़े प्रसिद्ध गायक थे। वो अपने जीवन के 40 साल तक उन्होंने आकाशवाणी में रोज शाम को लोक संगीत के कार्यक्रम में केवल वही गाते थे ब्रज के भजन, और उनको ब्रज की कोयल कहते हैं। और गाना बजाना तो ठीक बात है, लेकिन हृदय से वो इतने सखी भाव में संपृक्त ऐसे भक्त थे, वो इतना मधुर गाते थे, इतना मीठा गाते थे। और उनका एक क्रम था, वैसे वल्लभ संप्रदाय के थे वो, और उनका एक क्रम था कि वो यहाँ पर रहते थे। या आज मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि इसी महीने में 17 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया, और वो एक भजन गाते थे हमेशा। उन्होंने तो हजारों भजन गाए, लेकिन एक भजन वो बार बार रिपीटेडली गाते थे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। तो वो हर रोज राधा मान बिहारी लाल का श्रृंगार करते थे, और उसके बाद में रोज ऊपर से नीचे तक मान मंदिर की सीढ़ियां बुहारते थे। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना। कई बार हमने उनको दर्शन किया है अकेले में, कंधे पे वस्त्र लेकर, झाड़ू लेकर हाथ से, रोज हर एक स्टेप्स को साफ करते थे, और झाड़ू लगाने के बाद में वस्त्र निकालकर उसको सीढ़ी को पोंछते थे। कितनी सीढ़ियाँ पता है आपको? अभी जाओगे ना तो आप गिनना। हाँ प्रभु जी, किशोर प्रभु जी, आप गिनना मुझे और बताना कितनी सीढ़ियाँ हैं। वो रोज साफ करते थे, एवरी सिंगल डे उनका नियम था वो। और उनकी तमन्ना थी कि ये यहीं पर रहते हुए सीढ़ियाँ साफ करते करते ही शरीर छूट जाए मेरा। और 15 अक्टूबर के दिन बाबा की यात्रा इस साल की शुरू हुई। उसके पहले वो अपने घर गए थे, उनके पोते का एक्सीडेंट हुआ था, सबसे मिले और बोले अभी यात्रा के लिए वापस जा रहा हूँ। तो वापस आए तो बोला उन्होंने कि अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया, उनकी उम्र 83 ईयर्स की थी, अब मैं यात्रा नहीं कर पाऊँगा चल कर वगैरह, लेकिन रोज़ शाम को जहाँ पर भी यात्रा होगी वहाँ जाऊँगा और गाऊँगा। और वो विशेष एक राग में गाते थे, तब बाबा शाम का नृत्य किया करते थे, अभी भी करते हैं शाम को। तो उनका एक वो सेवा थी, वो ऐसे उत्कट इतना तीव्रता से मंत्र गाते थे, युगल मंत्र, और उसमें बाबा नृत्य करते थे। तो पहले दिन यात्रा में गए, शाम को फर्स्ट यात्रा तो यही थी ना, बरसाना से आरंभ होती है, तो फर्स्ट 3 दिन तो यही यात्रा होती है। तो यहीं पर शाम को पंडाल में गायन किया उन्होंने, दूसरे दिन सुबह मान बिहारी का श्रृंगार किया, और सब लोग 5:30 बजे अपनी यात्रा में दर्शन करने के लिए चले गए, पास में बरसाने में दर्शन करने के लिए। और ये उन्होंने कहा कि हम अभी बुहारी करते हैं अपनी सीढ़ी की, तो सीढ़ी की बुहारी करते करते वहीं पर गिर गए, और वहाँ से पत्थर में गिर गए और देहांत हो गया उनका। और जब ये लोग लौट के आए तो पता चला कि कोई गिरा है, तो देखेंगे तो क्या पूरे खून में लथपथ मृत अवस्था में मदन मोहन जी वहाँ पर गिरे थे, हाथ में झाड़ू एकदम टाइट पकड़ा हुआ था। तो जो वो चाहते थे जीवन भर में, उनका जीवन ही यही था, महल राधिका का बुहारा करेंगे, हम मंदिर की सीढ़ी बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, लगाएंगे कुंजों में जाकर बुहारी, लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे। हाँ, ढूंढेंगे हम उनको कुंजों में जाकर, वह भाग्य जाखी निहारा करेंगे, लगाएंगे ब्रज रज सभी तन बदन पर, जहाँ तक हुआ मन को मारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, सदा शाम शामा पुकारा करेंगे। मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ का जो रहस्य है वो पुकारने में है, सदा शाम शामा पुकारा करेंगे, सिराधे सिराधे पुकारा करेंगे। तो ये भजन उनका जीवन था, उन्होंने वो जिया, ही लिव्ड दैट सॉन्ग एंड ही डाइड इन द सेम मूड, ही पास्ड अवे स्वीपिंग द स्टेप्स। मैंने उनको पूछा था कि बाबा, तो उनको चाचा जी कहते थे, कि आप ये सीढ़ियाँ क्यों बुहारते हो? वो कहते हैं, कहते थे कि ये सीढ़ी जो है यहाँ पर, इस सीढ़ी में कभी भी राधा और कृष्ण जो है ऊपर नीचे जाते रहते हैं, इट इज़ अ रेगुलर फ्रिक्वेंटिंग एरिया, ये जगह ऐसी है जहाँ पर वो कभी भी ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। तब उनके पैरों में कोई कंकड़, कोई कांटा, कोई पत्थर लगना नहीं चाहिए, साफ रहना चाहिए, कभी भी वो आ सकते हैं, एनी टाइम दे विल कम एंड यू मे एबल टू सी देम ऑल्सो। बाबा ने कहा कि यहाँ पर श्री जी रहती हैं, ये नहीं कि केवल कहानी है, केवल इतिहास है, यहाँ पर श्री जी का नित्य निवास है। और मदन मोहन जी की इच्छा थी कि यहाँ पर सीढ़ी की बुहारी करते करते ही मेरा शरीर छूट जाए, तो श्री जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। बाबा ने कहा कि ये उनकी यही प्रूफ है कि श्री जी यहाँ पर रहती है। एक भक्त ने प्रामाणिकता से ऐसी इच्छा व्यक्त की, भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। हमारे श्यामानंद गोसाई भी मतलब वृंदावन में बुहारी करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर भी करते थे खदीर वन के अंदर जहाँ पर बकासुर का वध हुआ है। और ये भाव है भक्तों का, और ऐसे संत आज भी हैं, ऐसे नहीं कि श्यामानंद जी के समय पर ही हुआ करते थे गोसाई लोग, आज भी ऐसे भक्त ब्रज में हैं, केवल उनको मिलना चाहिए, भगवान की इच्छा होगी तो उनका परिचय भी होगा। और ये मदन मोहन जी इतने नम्र थे, प्रेम का सागर थे वो। और मेरा भाग्य ऐसा रहा कि मेरे घर पे वो कई बार, कई हफ्ते रह चुके हैं, और दिन रात केवल हमारे घर में रहते हुए कोई कभी आँख का ऑपरेशन करने आए थे। हमको बताने में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे हॉस्पिटल में जितनी आँखों का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, उसमें सबसे प्रेशियस आय जो थी वो मदन मोहन जी की थी। वो हमारे घर में रहते हुए हॉस्पिटल में उनको दोनों आँखों का ऑपरेशन किया गया, मोतियाबिंद का। और वो हमारी डॉक्टर ने जो है निकुंज बिहारी माता जी, उन्होंने अपने हाथों से वो ऑपरेशन किया। उनके घुटनों का भी ऑपरेशन, आर्थोस्कोपी हमारे हॉस्पिटल में हुआ। और कई अलग अलग जगह पर, आप जानते हैं, जब स्तो कृष्ण प्रभु का देहांत होने आया था, तभी वो हमारे घर में किसी के शादी के लिए आए थे, तुरंत मंदिर में भागे और भजन किया वहाँ पर। हमारे भक्ति तीर्थ महाराज जब गुजर रहे थे फिलाडेल्फिया में, तो भी वहाँ पर जाके उन्होंने ऐसा भजन किया था कि महाराज बच्चों की तरह रो रहे थे। उन्होंने कहा मैं वृंदावन जा नहीं पाया, उनकी इच्छा थी वृंदावन में आके शरीर छोड़ने की, भक्ति तीर्थ महाराज की, लेकिन वो अपनी अवस्था की वजह से यहाँ पर यात्रा नहीं कर सके। लेकिन ये लोग जब पहुँचे वहाँ पर और मदन मोहन जी ने जब गाया, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैं वृंदावन जा नहीं पाया तो वृंदावन को यहाँ पर प्रकट किया आगे उन्होंने। और ऐसे बालक की तरह जोर जोर से रो रहे थे जब मदन मोहन जी गा रहे थे। वही मदन मोहन जी हमारे श्री कृष्ण प्रभु के लिए भी आए और उनकी अंतिम अवस्था में जाते समय गा रहे थे उनके लिए। इतना बड़ा भाग्य है। और वो हमारे घर में हमेशा दिन रात बाजा लेके बैठ के गाता गाया करते थे, इतने भाव से गाते थे। एक उन्होंने भजन गाया था, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। ऐसे उनके बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं। तो हम सब लोग मदन मोहन जी को बहुत मिस करते हैं, और आप सब लोगों को विनती करता हूँ, आप लोग मदन मोहन जी से प्रार्थना कीजिए कि उनके अंदर जो भाव था, प्रेम भाव राधा रानी के लिए, जो नम्रता थी सेवा में, जो सेवा निष्ठता थी, सेवा निष्ठा, जैसे मैंने कल भी आपको बताया, नहीं कल आप नहीं थे शायद, सेवा निष्ठा कितनी इम्पोर्टेंट है। सेवा निष्ठा मतलब सेवा में निष्ठा होना कितनी ज़रूरी बात है। वो कहते थे कि कुछ दिन बुहारी लगने के बाद में, जब कुछ दिन बीतेंगे और उस बुहारी लगाने में कुछ रुचि उत्पन्न हो जाएगी, रति हो जाएगी, और सेवा किए बिना चैन नहीं पड़ेगा, जिस दिन सेवा नहीं होगी अस्वस्थ लगेगा, इसका मतलब क्या है, आपको सेवा की रुचि लग गई। और जब ऐसी रुचि उत्पन्न होगी तो वो कहते हैं कि कभी तो सुनेंगे हम चरणों के नूपुर, मतलब ऐसी अवस्था में कभी सेवा करते करते राधा रानी के चरणों की जो नूपुर की आवाज़ है वो सुनाई पड़ेगी। कभी तो बजाएंगे मुरली मनोहर, कभी कभी उनकी बांसुरी भी सुनाई पड़ेगी, और फिर हम सेवा करते रहेंगे, हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे, अगर भाग्य हुआ दर्शन भी कर लेंगे, लेकिन सेवा करते रहेंगे, दर्शन हो या ना हो। हाँ, जब झाड़ू लगाते रहेंगे और ठाकुर जी आते जाते रहेंगे तो उनको निहारते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, ये उनकी सेवा निष्ठा थी। इसलिए ठाकुर जी ने उनको इतना सुंदर उनका उत्सव किया दो लोग धाम में जाने का। सब ब्रजवासी कहते हैं कि रास पूर्णिमा अगले दिन थी, तो उसके पहले ही रास के सेवा में ठाकुर जी ने उनको बुला लिया ताकि वहाँ पर आगे सेवा करेंगे, वहाँ पर गाते रहेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। तो ये जो ब्रजवासियों का जो भाव है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रजवासियों के हृदय में ऐसा ठोस ठोस के प्रेम भरा रहता है, और ऐसे ऐसे ब्रजवासी का संबंध होना और उनके साथ में उनके हृदय के भाव को समझना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो गुरु महाराज राधानाथ स्वामी की दया से इनका परिचय हुआ और उनका भी परिचय हुआ, और कुछ सेवा भी उनकी हो सकी, ये हमारा भाग्य। आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि उनके जैसा प्रेम हम सबको प्राप्त हो, एक कण मात्र क्यों न हो, हम तो उसके योग्य नहीं हैं, लेकिन ये सब हमारे आँखों के सामने ठाकुर जी दिखा रहे हैं, ये परम भाग्य की बात है। तो अभी ये स्थान की लीला ऐसी है संक्षेप में कि राधा रानी के प्रेम में अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। उसमें एक भाव है मान का, मान यानी भगवान के संबंध में रूठ जाना, तो कई कारण से रूठती हैं। कभी ठाकुर जी लेट आते हैं रासलीला में, मिलन की सली पर लेट पहुँचते हैं, कभी कभी जब राजा रानी ने उनको मुरली बजाने को सिखाया, हम जानते हैं इस बात को, भगवान सब विश्व में फेमस है मुरली मनोहर के रूप में, लेकिन मुरली बजाना सिखाया किसने उनको? राधा रानी उनके गुरु हैं मुरली की, और नृत्य करने के लिए भी उन्होंने सिखाया कृष्ण भगवान को। तो ये जानबूझ के उनके साथ में अधिक समय रहने के लिए जानबूझकर वो गलत स्टेप डाला करते थे, ताकि भी इतने चतुर हैं, इतने कुशल हैं, सांदीपनी के आश्रम में गए तो छठ से सब कुछ सीख लिया उन्होंने इतने फास्ट में, लेकिन यहाँ पर कुछ सीखने के लिए बहुत स्लो स्लो डल हेडेड स्लो स्लो लर्निंग, हाँ लर्निंग डिसऑर्डर्स LD ऐसे दिखाते थे, क्योंकि अगर रॉन्ग स्टेप दिखाया तो फिर वापस सिखाएंगे और समय मिलेगा साथ में रहने के लिए। तो कुछ देर बाद भोली भाली राजा रानी समझ में आते थे उनका कि ये तो नाटक कर रहा है, तो गुस्सा करती थी। एक बार उन्होंने उनको, मैंने बोला ना आपको वहाँ पर बताऊँगा कहानी आपको, तो एक बार राजा रानी मिलने आई तो उन्होंने कहा कि आप तो इतने सुंदर हो, आपका चेहरा चंद्रमा जैसा है, तो यहाँ पर कितनी सारी माताएं बैठी हैं, अगर आपके पति आपको बताएंगे आपका चेहरा चंद्रमा जैसा है तो आप बताएंगे आज आपके लिए 56 भोग बनाएंगे आपने हमें चंद्रमा की तुलना दी है, वाह थैंक यू वेरी मच। लेकिन राजा रानी को गुस्सा आया, रूठ गई वो, वो कहते हैं कि हमारे सौंदर्य में हमारे चेहरे में कोई दाग है क्या? देखो चंद्रमा में कितने दाग है, तो उनकी तुलना हमारे साथ कैसे कर सकते हैं आप? चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य में कभी ग्रहण लगता है क्या? चंद्रमा हर 15 दिन में उसका क्षय होता है, हमारे सौंदर्य में कभी क्षय नहीं होता है, हमेशा बढ़ते रहता है। चंद्रमा परप्रकाशित है, हमारा सौंदर्य स्वप्रकाशित है। चलो बाकी सब बातें तो ठीक है, ये सब तो कारण ठीक है, हम लोग फिर भी मान सकते हैं, लेकिन चंद्र हमने, आपने चंद्र के नाम से हमारी तुलना की, चंद्र हमारे राइवल पार्टी की गोपी चंद्रावली का आधा नाम है, चंद्रावली का आधा नाम की तुलना हमारे साथ में कैसे कर सकते हैं? आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। तो रूट गए, चली गई वो, यहीं पर लीला हुई थी, वो चली गई। तो भगवान बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा सॉरी सॉरी माफ करना, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा आप सोचेंगे, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तब तक तो पूरी रूट गई थी वो, तो वो मिलना नहीं चाहती थी, बात करना बंद, रोना शुरू कर दिया, बैठ गई। तो राज भगवान ने ललिता जी को पुकारा, उन्होंने कहा ललिता जी आओ, अभी बहुत संकट हो गया, कुछ करो, जाओ उनको मना लो। तो ललिता जी गई, तो जब ललिता गई तो और दो स्टेप ऊपर चढ़ गई वो, फिर वापस आई, ठाकुर जी ने कहा जाओ अभी मनाओ उनको, तो और दो स्टेप चढ़ गई। तो बेचारी ललिता को अप एंड डाउन कसरत हो रही है पूरी, तो वो कहते आवत जावत हार गई मैं, कहते आप मुझे बोल रहे जाओ, वो बोल रहे मत आओ। तो ललिता जी उधर लेके गई उनको, और ये इनका हाथ और उनका हाथ मिलाने का प्रयास किया तो झटकार दिया राधा रानी ने, फिर वहाँ से लेके गए, वहाँ के उसके हाथ को जुड़ाने का प्रयास किया, वो भी झटकार दिया, वहाँ से आए तो राधा रानी ने यहाँ देखा, वहाँ से आए तो राधा रानी ने इधर देखा, सब प्रयत्न हार गए, और आखिर में ऊपर नीचे करते करते राधा रानी इस पहाड़ की चोटी पर पड़ गई, आकर मान मंदिर के पहाड़ पर, बहुत दुखी हुए। कृष्ण भगवान पहले तो रोने लगे, कांपने लगे, उसके बाद में हाथ जोड़ा उन्होंने, उसके बाद में वो लेट गए जमीन पर, लोटपोट हो गए, अपने आंसुओं से राधा रानी के पैर धोए उन्होंने, फिर भी राधा रानी ने नहीं माना, उनकी याचना किया, प्रार्थना किया, रोए गिड़गिड़ाए, फिर भी नहीं बात बनी उनकी, फिर बहुत दुखी हो गया, अभी जीने में कोई अर्थ नहीं है, अभी मर जाना चाहिए, अगर राधा रानी रूठ गई है, कृपा नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, तो जीवन में अर्थ क्या है? तो कृष्ण भगवान तो ऐसे निश्चेष्ट से हो गए। उतने में ललिता जी ने आंखें कान में कुछ बोला उनको, वो तुरंत कृष्ण भगवान रोते हुए थे एकदम उठ के चले गए, राधा रानी वैसे रूठ के बैठ गई, और ललिता जी वहाँ पे आके हाथ में बैठ गई ऐसे ही बैठने के लिए। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक मोर आया, बहुत सुंदर मोर आया, और वो मोर ताथई ताथई नाच करने लगा, बहुत सुंदर, बादल भी आए, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, हाँ सुंदर खुशबू आने लगी सुगंध की, और मोर ने बहुत सुंदर नृत्य किया, और भी मोर आए उसको मिल गए, लेकिन वो विशेष मोर था, उसने बहुत सुंदर नृत्य किया, उसको देखकर बाकी सारे मोरों को प्रेरणा हुई, बहुत सुंदर नृत्य किया, काफ़ी देर तक नृत्य हुआ, तो ललिता जी ने कहा अरे श्री जी देखो तो सही कितना सुंदर मोर नृत्य कर रहा है, तो वो देखने को भी तैयार नहीं थी, दोबारा बोला, तीन बार बोला, अरे एक बार तो देखो। तो राधा रानी ने मुड़कर देखा तो इतना सुंदर नृत्य मोर कर रहा था, उतना उसका पद लालित्य इतना सुंदर था कि राधा रानी देखती रह गई और देखती रह गई, और उनको पता ही चला नहीं कि कभी उनका क्रोध खत्म हो गया कुछ देर बाद। बाद में इतनी प्रेरित हो गई कि स्वयं जाकर उस मोर के साथ नृत्य करने लगी मोरनी बनकर, और बहुत देर तक मोरनी और मोर दोनों ने नृत्य किया, बहुत देर तक नृत्य किया। और एक आखिर में ऐसा एक पोज आया जिसमें मोरनी का एक पंख ऐसा और मोर का एक पंख ऐसा जुड़ा हुआ था। तब इतने पास में आए तब राधा रानी के समझ में आया ये मोर तो श्याम सुंदर है। ये सब ललिता जी की आइडिया थी कि आप उनको रिझाओगे अच्छी तरह से तो मान भंग हो सकता है। तब बहुत उनको आनंद आया उस समय कि भगवान ने इतना सुंदर अद्भुत रूप धारण करके यहाँ पर मोर का नृत्य किया और राधा रानी का मान समाप्त कर दिया। तो ये मानगढ़ है, यहाँ पर वो लीला हुई थी कि भगवान ने मोर बनकर यहाँ पर राधा रानी को रिझाया था। और एक ही लीला नहीं है मोर की, एक बार राधा रानी ने डिमांड किया कि आप अच्छे नर्तक हो, आप मोर बनकर नृत्य करो। तो उन्होंने मोर बनकर नृत्य भी किया है और राधा रानी ने उस नृत्य को देखा है और बाकी सब लोगों ने भी मोर बनकर उसमें सहायता की है। एक बार मनुष्य के रूप में शरीर में होते हुए मोर की तरह भगवान ने नृत्य किया है। एक बार ऐसे हुआ कि राधा और कृष्ण जो है वह ऐसे घूमते घूमते पहाड़ पर आ गए, यहाँ पर पहाड़ पर आए तो बहुत हल्की ठंडी खुशबूदार हवा बह रही थी, आकाश में बादल आ गए थे, हल्की हल्की बूंदे भी शीतल शीतल मधुर मधुर बूंदे भी गिर रही थी और राधा रानी का पल्लू वैसे हवा में फैर रहा था। तो उस समय राधा रानी ने एक मोर को इशारा किया तो मोर वहाँ पर आया, और लोगों को इशारे किए तो सब मोर वहाँ पर आए और नृत्य करने लगे, और ऐसे सुंदर मोर मोरनियाँ नृत्य करने लगे, बहुत सुंदर नृत्य हुआ। और एंड में राधा और कृष्ण भी मिलन जाकर उन्होंने मोर मोरनी का नृत्य साथ में किया। ऐसे अलग अलग विविधतापूर्ण मोर की लीला यहाँ पर हमेशा होती रहती है, एक लीला नहीं है। भगवान की लीला कभी भी मोनोटोनस नहीं होती है, भगवान की एक लीला में अनेक अनंत विविधता होती है। तो यहाँ पर सामने आपको दिखेगा एक हरे रंग का मंदिर दिखाएगा, एक चोटी पर आपको दिखाएंगे जाते वक्त, वो मोर कुटी है, मयूर कुटी, उधर वो लीला हुई थी। तो उधर अभी कुछ 200-300 साल पहले एक बाबा रहा करते थे, इतने वो सिद्ध बाबा थे कि एक सिंह उनका शिष्य था, हाँ, और वो सिंह जो है वो गले में बाबा उसके झोली लटकाया करते थे और वो झोली लटकाकर मानपुर में जाकर भिक्षा किया करता था। वे आपके घर में समझो बेल दरवाज़ा बंद है, बेल बजती है टिंग टोंग, आप दरवाज़ा खोलते तो आपको सामने एक सिंह नज़र आता है, शेर, भवती भिक्षान देही, तो आप भाग जाएंगे वहाँ से। ऐसे वो मुँह जो सिंह था वो मानपुर के घरों में जाकर दस्तखत देकर भिक्षा इकट्ठा करता था और सब भिक्षा लेकर बाबा को देता था, तो बाबा उसमें से भिक्षा लेकर भगवान को भोग लगाकर उसको खाते थे और वो बचा हुआ रोटी जो है वो सिंह खाया करता था। ऐसा अद्भुत वहाँ पर दृश्य था। तो बाबा जो था उसकी विशेषता ये थी कि वो अंधा था, साधु जो था वो अंधा था। तो उसको राधा रानी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में ये पूरा लीला दिखाया, मोर लीला, और फिर आदेश दिया उसको कि अभी आपको ये चित्रपट बनाना है हमारी मोर लीला का। तो उसने कहा तो मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या चित्रपट बनाऊँगा। उन्होंने कहा मेरी कृपा से आप ज़रूर बनाओगे इसको। तो स्वप्न में ही राधा रानी ने, मतलब स्वप्न चल रहा है लेकिन वास्तव में वो चित्र पेंटिंग हो रहा है। इस तरह से वो अंधे भक्त ने, साधु ने राधा रानी के निर्देश के अनुसार, स्वप्न के आदेश के अनुसार वास्तव में वो चित्रपट बनाया। और वही चित्रपट जो है, मैं बताया ना आपको, ऐसे राधा रानी का हाथ ऐसे और कृष्ण का हाथ ऐसे, दोनों मोर बने हुए हैं और नाच रहे हैं मोर मोरनी बनकर, वो चित्रपट अभी वहाँ पर ऑल्टर पर है, वही ऑल्टर पर वहाँ पर रखा गया है, उसकी ही पूजा आराधना होती है। तो ऐसे सुंदर स्थान है ये, अद्भुत और उत्कट स्थान है। हाँ, तो क्या बचा अभी बताओ। रमेश बाबा, राधानाथ महाराज हो गया, मान लीला हो गई, और चित्रा सखी और ओके। इसके आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आगे दो कुंड है, एक है जल विहार कुंड, उसका नाम है जल विहार कुंड की लीला ऐसी है कि वहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग पुकारने के लिए आते हैं, लेकिन पुकारने के लिए भी ड्रेस कोड है यहाँ पर। कौन सा ड्रेस कोड है? सखी बनकर ही पुकारने को आना पड़ता है, ऐसे आके पुकार नहीं सकते हैं। हाँ, तो शिवजी महाराज आए यहाँ पर और शिवजी महाराज अपने आप ही सखी का भेष श्रृंगार कर रहे थे। उतने में पार्वती जी वहाँ प्रकट हुई, गौरी जी। तो ऐसे कहा है कि गौरी जी प्रकट हुई तो तुरंत वहाँ पर सुनहरा प्रकाश छा गया, इसलिए उस कुंड का नाम गौरी कुंड भी है, क्योंकि गौरी जी वहाँ पर आई, उनकी प्रभाव वहाँ पर प्रकट हुई। और गौरी जी ने अपने पति का थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मजाक किया हुआ है, अरे आप लोगों को क्या पता है श्रृंगार कैसे करते हैं हम लोग स्त्रियाँ, वो हमसे सीखना चाहिए आपको श्रृंगार कैसे करना है। क्या श्रृंगार करके रखा है आपने, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बन रहे हैं आप, हम आपका श्रृंगार करेंगे। तो फिर गौरी जी ने शिवजी महाराज का श्रृंगार किया है, सखी गोपेश्वर बनाकर उनको भेजा है, वो श्रृंगार करके फिर यहाँ पर आकर उन्होंने टेर लगाई है, राधा रानी की आवाज़ लगाई है। तो ये वो गौरी कुंड है वहाँ पर। और आगे धोनी कुंड है जहाँ पर वृषभानु महाराज की जो लाखों गायें थी वहाँ पर उनका दोहन हुआ करता था, दोहन दूध निकालते थे, तो वो धोनी कुंड उसके आगे हैं। और वहीं पर ऐसे कदम के वृक्ष हुआ करते थे जिसमें दोने अपने आप ही आया करते थे। हाँ, मैंने कहा ना कि ये पेड़ जो है ये कल्पवृक्ष वृक्ष हैं, ये सब धाम के पेड़ को साधारण वृक्ष नहीं है। हाँ, ये आपकी सारी कामनाएं की तृप्ति कर सकते हैं और ये ठाकुर जी की लीलाओं का निरंतर अवलोकन करते रहते हैं। और जब हम उनकी छाया में बैठते हैं, उनके आश्रय में सहारे में बैठते हैं, तो वो जो उन्होंने लाभ लिया है आध्यात्मिक इस दर्शन का, उसका दिव्य लाभ ये हमको भी देते हैं। जो यात्री यात्री बनकर हम लोग आते हैं, इनके सहारे बैठते हैं, तो वो हमको भी उसका लाभ देते हैं। इसलिए पेड़ जो हैं बड़े, भगवान कृष्ण भी धेनुकासुर की लीला के पहले इस पेड़ों का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, बलराम जी के गौरव के अंदर भी इन पेड़ों का गौरव करते हैं भगवान, कि ब्रज के पेड़ कितने महान हैं। संत भी यहाँ पर ब्रज के, पांडव लोगों ने भी यहाँ पर पेड़ के रूप में भजन किया हुआ है, संत लोग भी पेड़ बनकर भजन करते हैं, गोपियाँ भी पेड़ के रूप में रहती हैं, राधा रानी का स्वरूप है सब कुछ ऐसी दिव्य। तो ये पेड़ जब इच्छा भगवान की होती है तुरंत अपने पत्तों को दोना में रूपांतर कर देते हैं, तो ऐसे पेड़ भी वहाँ पर हुआ करते थे, इसलिए वो धोनी कुंड नाम है उसका। और आप लोगों के ग्रुप का नाम क्या है प्रभु जी? तो आपको ऐसा लगता नहीं कि चित्रा सखी के बारे में आपको जानना चाहिए? अभी ये यहाँ पर बताना बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि हम लोग अभी चिकसोली गांव में बैठे हैं, गहवर बन में बैठे हैं, मान मंदिर में बैठे, लेकिन ये मान मंदिर जो है वो चिकसोली गांव में है। तो हम लोग अभी मोरकुटी का मंत्र बोल देंगे। हाँ, मोरकुटी हम लोग जा नहीं पाएंगे, यहाँ से प्रणाम करेंगे जहाँ पर भगवान ने मोर लीला की थी, सब लोग बोलेंगे किरीटीने नमस्तुभ्यम, किरीटीने नमस्तुभ्यम, मयूर प्रिय वल्लभे सुर्म्याय महाकुत्यौ शिखंडी पदवेश्मने। यहाँ पर हे राधा रानी और भगवान, आप लोगों ने मोर बनकर नृत्य किया है, ऐसे पवित्र स्थान को हम प्रणाम करते हैं। फिर गहवर बन में हम लोग बैठे हैं तो गहवर बन को प्रणाम कर लेते हैं, जो भगवान के आनंद के लिए राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। गहवराख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधायिने गोपी रमण सौख्याय वनाये च नमो नमः। इस गहवर वन में राधा कृष्ण रमण करते हैं, लीला करते हैं, गोपियों को आनंद देते हैं, प्रेम का सान्निध्य का, ऐसे वन को हम प्रणाम करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, मैकेनिकल प्रार्थना मत कीजिए। अभी मान मंदिर को भी प्रणाम करते हैं। मान मंदिर ऐसा स्थान है जहाँ पर देव गंधर्व आकर निवास करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, सबके मुक्ति और मोक्ष और प्रेम प्राप्त करने का स्थान है। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर संज्ञाना नमस्ते रत्न भूमये, नमस्ते रत्न भूमये। ऐसी भूमि है, ऐसा वन है जहाँ पर राधा रानी अपने प्रिय, ये मंदिर ऐसा है जहाँ पर मान करके अद्भुत तरीके से राधा रानी कृष्ण के प्रेम की वृद्धि करती है। और नीचे जाकर हम लोग अभी इसके नीचे जाएंगे तो गहवर कुंड है, और वो जो गहवर कुंड है ये अगर चार पर्वत की चोटियां अगर ब्रह्मा जी का शीश हैं तो गहवर कुंड उनकी नाभि है, अम्बिलिकस ऑफ ब्रह्मा जी। और वहाँ पर राधा रानी हर रोज अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ में स्नान करती है, तो वो राधा रानी का और सखियों का चरणामृत भी है। और जब वो स्नान करती हैं तो मोर कुटी से सब ग्वाल बाल मधुमंगल जैसे लड्डू फेंक कर उनको तंग करते हैं, ऐसा सुंदर स्थान है वो। वहाँ पर ही मधुमंगल को जब एक बार पकड़ा था उन्होंने मक्खन चोरी करते हुए, फिर बाद में पश्चाताप हुआ था तो मधुमंगल को वहाँ बिठाकर उनकी पूजा अर्चा की थी, उनको लड्डू भी खिलाए थे, वो आसन भी वहाँ बना हुआ है जहाँ मधुमंगल जी को बिठाकर गोपियों ने दक्षिणा भी दिया था, माफ़ी मांगी थी, लड्डू भी खिलाए थे। ऐसा बहुत अद्भुत स्थान है वो, उसको प्रणाम करते हैं। देवकृतार्थ रूपाया
देवकृतार्थ रूपाया
श्री राधा सरसे नमः त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्यतीर्थाय ते नमः रम्यतीर्थाय ते नमः। ऐसा गहवर कुंड जो राधा रानी को बड़ा प्रिय है, सखियों को बड़ा प्रिय है, वहाँ स्नान किया करती है, ऐसे सुंदर स्थान को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। अभी चित्रा सखी, चित्रा सखी के गांव में हम बैठे हैं, और चित्रा सखी आप मायापुर में अगर गए हैं तो आपको पता चलेगा कि राधा माधव के पास में अष्ट सखियाँ खड़ी हैं, और कृष्ण के साइड में ललिता देवी खड़ी हैं, उनके बाजू में कौन खड़ी है, चंपक लता देवी खड़ी, चंपक लता के बाजू में दाहिनी ओर चित्रा सखी खड़ी हैं, उनका नाम चित्रा सखी भी है, चित्रलेखा भी है, और वो इस गांव में उनका निवास है। उनके पिताजी का नाम धर्म भानु है, उनकी माताजी का नाम सुभगा देवी है, दूसरा नाम पिताजी का है चतुर, चतुर गोप, और सुभगा देवी का दूसरा नाम है चर्चिका देवी। ये चर्चिका देवी का नाम कई गोविंद लीलामृत जैसे ग्रंथों में आता है बार बार। इनका जन्म जो है राधा रानी के जन्म के बाद 2 दिन के बाद में हुआ था, दशमी के दिन, भाद्रपद शुद्ध दशमी के दिन हुआ था। और चित्रलेखा का जन्म जहाँ हुआ था वहाँ पर एक कुंड भी है, चित्रलेखा कुंड नाम है उसका। कुमकुम के रंग जैसी उनकी कांति है, चंपक लता की देवी की कांति जो है वो चंपा के फूल की तरह है। हाँ, राधा रानी का गौर वर्ण है, स्वर्ण गौर वर्ण, तप्त कांचन गौरांगी, वैसे इनका वर्ण जो है कुमकुमवत है। ये पीत वस्त्र परिधान करती है, मतलब पीले रंग का वस्त्र जो पीताम्बर जैसा परिधान करती है, और वो कांच जैसा चमकीला होता है, कांचवत। हर एक सखी का एक अपना अपना कुंज होता है, स्पेशली डिजाइन हर ओन ग्रोव, जैसे विशाखा देवी का विशद कुंज है, चित्रा देवी का विचित्र कुंज है, उनका नाम है कुंज का विचित्र कुंज, चिकसौली गांव है उनका, ये कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इसका वैसा नाम है चिकित्सवन या चिकित्सपुर, तो उनका कुंज का नाम है विचित्र कुंज। और हर एक सखी के कुंज का एक रंग होता है, तो इनका रंग जो है किंजल का वर्ण कहते हैं, बहुत अलग टाइप का, आई कैन डिस्क्राइब द कलर टू यू, ऐसा रंग है। उनका प्रिय वाद्य जो है मृदंग है, आपको जब अष्ट सखियों का दर्शन होता है ना गोपीनाथ मंदिर में, तो एक सखी आपको मृदंग बजाते हुए दिखाई देगी, वो चित्रा सखी है। इनको शंकरा राग बहुत प्रिय है, अनेक रागों में से शंकरा राग प्रिय है, और अभी उनकी सेवा क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ये अलग अलग फूलों से अलग अलग मौसम में मधुमक्खियों द्वारा इत्र निर्माण करने में बहुत कुशल है, अलग अलग फूलों के अलग अलग रंगों के फूलों से पंखुड़ियों से उसका सार तत्व निकालकर उसके द्वारा बहुत सुंदर इत्र बनाना, इस कला में ये बहुत निपुण है इनके। और वो इत्र किस समय पर कौन से मौसम में कौन से ऋतु में कौन से भाव में कौन सा इत्र अर्पण करना है, ये इनकी एक्सपर्टीज है। अभी हम लोग उसको समझते हैं एरोमाथेरेपी के रूप से, एरोमाथेरेपी मतलब हर एक फूल का अपना एक सुगंध होता है, और उसका अपने शरीर पर असर भी होता है, भावनाओं पर, मन पर और शरीर पर भी होता है। तो ये शास्त्र जो है ओरिजिनली चित्रा देवी का है। इनके पिताजी जो हैं धर्म भानु जी, ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष शास्त्र में बड़े निपुण हैं, इसलिए ये भी ज्योतिष शास्त्र में बड़ी पारंगत हैं, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। साथ साथ में इनकी विशेष सेवा क्या है कि जैसे कि वृंदा देवी जो है वो सभी ब्रज में सभी गोपियों के साथ में भगवान की लीलाओं का, कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ लीलाओं का आयोजन करती है, और जगह जगह पर कौन से वृक्ष लगाना है, कौन से मेंटेन करना है, कौन सा रंग के फूल लगाना है, किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, ये सारी वृंदा देवी के अंडर होता है। ये वृंदा देवी चित्रा सखी के निर्देश में वृक्षों की रचना करती है और वृक्षोपचार यानी कि वृक्षों को मेंटेन कैसे करना है, कैसे परवरिश करनी है, कैसे वृद्धि करनी है, कौन से रंग के फूल के वाले वृक्ष कहाँ लगाने हैं, कौन सी बेलियाँ, कौन से बूटे कहाँ लगाने हैं, ये जो अलग शास्त्र है राधा कृष्ण के आनंद के लिए, मौका देखते हुए, स्थिति देखते हुए, ऋतु को देखते हुए कैसे ये वातावरण वृक्षों के संबंध में सुशोभित करना है, ये चित्रा देवी का सेवा है। दिव्य औषधि और वनस्पति के बारे में इनको बहुत गहरा ज्ञान है और इसमें वो बहुत पारंगत है कैसे उसको यूज करना है। देश विदेश की भाषाओं को वो जानती है, सब प्रकार की भाषाएं बोल सकती है, बड़ी विद्वान है वो। और एक विशेष बात है उनके अंदर, सर्प मंत्र की विशेषज्ञा है वो। तो सर्प काट लेता है तो उसके मंत्र कौन सा बोलना है ये उनको पता है। हम तो बड़े ऐसे हैं, हम तो ठीक से बोल नहीं पाते इसको, लेकिन सर्प मंत्र जो है ना वो बड़ी बड़ा विषय है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ये पूरे सर्प मंत्र के विषय में वो निपुण है और किसी भी हनी को देखकर ये बता सकती है कि कौन से वन से, कौन से फूल से निकला हुआ ये हनी है, और किसी भी दूध को देखकर बोल सकती है ये कौन से गाय का दूध है, ये उनकी विशेषता है। ये कांच के अलग अलग व्यंजन, बर्तन आदि डेकोरेटिव पॉट्स कांच के बनाने में बहुत कुशल है और रस भरे व्यंजन बनाने में भी बहुत कुशल है। वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग वेरी वेरी सकुलेंट टेस्टी फूड मटेरियल्स। और इनकी सखियां हैं तीन, विमला देवी, रति देवी और भद्रमंजरी, ये उनकी तीन प्रधान सखियां हैं और इन एक एक सखियों की एक एक करोड़ सखियां उनके अंडर काम करती हैं। इस तरह से विमला देवी, रति देवी और भद्रमंजरी के रूप में उनके साथ में 3 करोड़ गोपियां उनको असिस्ट करती हैं भगवान की सेवा में। बोलो चित्रा सखी की, चिकित्सपुर धाम की, चिकित्सवन की, चित्रा यात्रा ग्रुप की जय जय श्री राधे। इस तरह से बरसाना के बारे में एक ही इतना ही संक्षेप में कह सकते हैं कि सब लोग राधा राधा पुकारते हुए जीवन को बिताना, अगर कृष्ण का प्रेम चाहते हो तो राधा को पुकारना, तो ही आपके पीछे पीछे आएंगे, आपके कृपा करेंगे। श्री बरसाना धाम की, श्री जी महारानी आपको बार बार बरसाने में बुलाएं और यहाँ के रस का और भक्ति का आनंद दे दें, यही मैं आपको आपके लिए उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। श्रीमती राधा रानी की जय।